Thank you. Mother's divine grace. Srila Bhai Charanarvind Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki. ISKCON Vipati Sansthapaka Acharya Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajak Acharya Ashtodaraksi Srimad. His divine grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki. Sri Sri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kund Radha Kund Sri Grigovardhan ki. Brajabhumi Sri Vrindavan Dham ki. Purushottam Kshetra Sri Jagannath Puri Dham ki. Navadvip Mayapur Dham ki. Ganga Mai ki. Jamuna Mai ki. Bhakti Devi ki. Krishna Bhakti Pradayani Srimati Tulasi Maharani ki. Kaliga Pavan Harinam Sankirtan ki. Hare Krishna Maha Mantra ki. Srila Prabhupada Translated Book Distribution ki. Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ji ke Tirubhav Mahotsav ke upalaksh mein aaj ke pratahkalin Srimad Bhagavat ke katha ka vishay Srila Prabhupada ji aur unka yogdan. तो श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने उनके चरित्र के विषय में पांच प्रमुख गुण जो कि किसी भी लीडर के लिए आवश्यक हो, आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए आवश्यक हो, उसके विषय में वर्णन किया है. पहला गुण ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता. श्रील प्रभुपाद जी नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप थे. नम्रता का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में ह्यूमिलिटी शब्द लैटिन का ह्यूमस शब्द से आता है जिसका अर्थ है सॉइल या मिट्टी. नम्रता वो मिट्टी है जिसके अंदर भक्तिलता बीज जागृत होती है, पनपती है. तो श्रील प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे, श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षित होने के पश्चात गौड़ियामठ की स्थापना तो हो चुकी थी, प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा तत्पर रहते थे। भक्ति रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज के एक शिष्य जिनका नाम था भक्ति सुंदर गोस्वामी, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था गोविंद ब्रह्मचारी। तो श्रील प्रभुपाद उनको बोलते थे कि चलो भाई प्रचार के लिए चलते हैं। अब गोविंद ब्रह्मचारी बोलने लगे कि श्रील प्रभुपाद उस समय तो अभय बाबू थे, अभय बाबू हमको तो प्रचार आता नहीं, हम तो नए नए ब्रह्मचारी हैं। प्रभुपाद कहते थे कि आप हमारे साथ चलो, सैफरन में आप हो, लोग आपका सम्मान करेंगे और कई लोग एकत्रित होंगे, फिर बाद में हम देख लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद उनको ले के चलते थे, प्रोग्राम में व्यासासन में बिठाते थे, उनको बोलते थे कीर्तन करो, तो कीर्तन करते थे। कीर्तन जब समाप्त होता था तो प्रभुपाद जी जो कि ऑडियंस में बैठे रहते थे नीचे, वो पब्लिक की ओर मुंह करके पूरा लेक्चर दे देते थे। फिर लेक्चर के बाद लोगों को बोलते थे ये जो आसन पे बैठे उनका आशीर्वाद ले लो। तो प्रभुपाद जी इतने नम्रता का स्वरूप थे कि किस अवस्था में भी वो प्रचार करने के लिए तैयार थे, और इसलिए वो हमेशा कहते थे प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। तो श्रील प्रभुपाद जी विनम्रता पूर्वक जो कोई भी परिस्थिति उनको प्राप्त हुई उसमें वो भक्ति कर रहे थे। आपको पता ही है कि श्रील प्रभुपाद जी का एक सुंदर घर था सीताकांत बैनर्जी लेन में, और तब प्रभुपाद जी उनके फर्स्ट फ्लोर में गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों को हरिनामामृत व्याकरण सिखाने के लिए वो दे दिए थे। सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, उनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री, बड़े श्रेष्ठ संस्कृत के विद्वान थे। गौड़ीय मठ के ब्रह्मचारियों को लेक्चर देने के बाद वो बाहर निकले। प्रभुपाद जी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच जो सीढ़ी है उसके ऊपर बैठकर जप कर रहे थे। ढोल गोविंद शास्त्री आए और आने के बाद प्रभुपाद जी के बगल में बैठे। प्रभुपाद जी जप कर रहे थे, उनके बगल में आके बैठ के बोलते हैं कि अभय बाबू अभी मैंने बहुत लेक्चर दिया है, पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। लेक्चर तो हमने दे दिया, महाप्रभु ने कहा कि पूरे विश्व भर में हरिनाम का प्रचार होगा, लेकिन समझ में नहीं आता ये कैसे होगा, संभव है क्या। प्रभुपाद जी जप करते करते उठे, दो कदम नीचे उतरे, उतरने के बाद मुड़कर डोल गोविंद शास्त्री की ओर संकेत करते हुए कहते हैं अगर शिला अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है तो ये अवश्य भविष्य में सार्थक होगा। फिर प्रभुपाद जी दो कदम उतरते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर डोल गोविंद शास्त्री को देख के कहते हैं भविष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में समर्पित कोई मूर्ख शिष्य अवश्य इस कार्य को सार्थक करेगा। तो उसको सुनकर डोल गोविंद शास्त्री जो कि सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे उनको लगने लगा कहीं वो मैं तो नहीं। प्रभुपाद जी दो कदम नीचे उतरे, मुड़े, संकेत करते हुए डोल गोविंद शास्त्री को कहते हैं और वो व्यक्ति आप नहीं होंगे। तो डोल गोविंद शास्त्री को लगने लगा अरे अभय बाबू को क्या लगता है वो कर पाएंगे क्या, वो कैसे कर सकते हैं, वो तो हमेशा व्यवसाय के विषय में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उनके द्वारा ये नहीं संभव है। तो उस समय गौड़ीय मठ में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन भविष्य में वही अभय बाबू, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद बनेंगे। प्रभुपाद जी उस समय विनम्रता पूर्वक सेवा में लगे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय का जब वो उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में संन्यास के पश्चात अपने गुरु भाई के साथ श्रील प्रभुपाद बैठकर प्रसाद पा रहे थे। अचानक कुछ लोग वहां आए, देखा दो लोग प्रसाद ले रहे हैं, उसको देखकर वो चले गए। प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई को कहते हैं, ये लोगों ने अभी आके दर्शन किया कि दो वृद्ध लोग भोजन पा रहे हैं। क्या देखा? दो वृद्ध लोग भोजन पा रहे हैं, उनको पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन का भविष्य एक बूढ़े के हाथ में है। अर्थात प्रभुपाद जी को इतना आत्मविश्वास था कि अगर शिला सरस्वती ठाकुर ने उनको ये आदेश किया 1922 में, तो अवश्य एक दिन उसको सार्थक करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी जब जलदूत में निकले, तो जब बॉस्टन हार्बर जहाज पहुंचने वाला था, बॉस्टन के कुछ पहले जहाज जब बॉस्टन के अंदर जाने वाला था, तब प्रभुपाद जी उस शिप के डेक पर आए। श्रीला प्रभुपाद जी शिप के डेक पर देख रहे थे आतुरता से कि बॉस्टन कब आने वाला है, क्योंकि प्रभुपाद जी को बड़ी आतुरता थी कि कब हम प्रचार आरंभ करें। सामने से एक और शिप आ रही थी, प्रभुपाद जी का शिप उसको क्रॉस किया, तो उस शिप का कप्तान अपने शिप के ऊपर खड़े होकर दूसरे शिप के कप्तान को सिग्नल देते हैं, क्योंकि उन लोगों की एक प्रथा होती है कि दो शिप अगर आमने सामने से जाए तो दोनों शिप के कप्तान एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि आगे सब ठीक है। तो उस शिप के कप्तान जो बॉस्टन हार्बर से निकला था वहां खड़े होकर सिग्नल दे रहे थे, लेकिन जहां जलदूत के कप्तान को खड़ा रहना था वहां वो कप्तान किसी कारणवश नहीं खड़े थे, प्रभुपाद खड़े थे, और प्रभुपाद खड़े होकर यू करने लगे। अब प्रभुपाद जी के संकेत को देखकर वो कप्तान सोचने लगा, ये तो शिप के कप्तान ही लग रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के मुख को देखकर, उनके तेज को देखकर वो बड़े प्रभावित हुए, पता नहीं ये कौन सज्जन है जो खड़े होकर बड़े उत्साह से यू कर रहे थे। अब प्रभुपाद जी बॉस्टन तक जाने के लिए रुके ने प्रभुपाद जी को लगा कि प्रचार का कार्य तो यहीं शुरू हो गया। अब वो शिप का जो कप्तान था जब भारत गया या कहां गया, घूम के जब लौट के आया एक साल बाद, न्यूयॉर्क में वो घूम रहा था कप्तान, अचानक उसने न्यूज़पेपर देखा और न्यूज़पेपर में प्रभुपाद जी का फोटो था और लिखा हुआ था 26 सेकंड एवेन्यू में इनका लेक्चर है। चेहरा देख के उनको लगा यार जाना पहचाना लग रहा है, फिर याद किया कि हाँ भाई शिप के ऊपर खड़े होकर जब हमने हाथ घुमाया था तब यही थे वो, तो उनको लगा चलो जाके मिलते हैं। तो प्रभुपाद जी को मिलने गए, प्रभुपाद जी का दर्शन किया, उनको वो वृत्तांत सुनाया, और शिला प्रभुपाद जी की वाणी से इतने प्रभावित हुए प्रभुपाद जी के वो शिष्य बन गए। तो ये मत समझो कि बॉस्टन में जाने के बाद प्रचार स्टार्ट हुआ, जलदूत में समुद्र में ही स्टार्ट हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी की नम्रता थी, कि हर परिस्थिति में जो कोई भी अनुकूल प्रतिकूल मिले, प्रभुपाद जी प्रचार आरंभ कर देते थे। कभी श्रेय नहीं लिया कि हमारे कारण हुआ, हमेशा श्रेय दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। जुहू में श्रील प्रभुपाद जी कुछ आए हुए अतिथियों से भेंट कर रहे थे। एक बहुत बड़े उद्योगपति जिनका नाम था ब्रज रतन मोहता जी, वो वहां आए। प्रभुपाद जी के सामने आकर प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने उनका परिचय दिया सबको। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये ब्रज रतन मोहता जी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मोहता जी ने जैसे सुना, प्रभुपाद को कहा, शिला प्रभुपाद, आप 40 रुपए के साथ अमेरिका गए, अब पूरे विश्व में इस्कॉन की 40 करोड़ रुपए के ऊपर की संपत्ति है, असली बिजनेसमैन तो आप हो। तो प्रभुपाद तुरंत कहते हैं, तो आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ। मोहता जी कहते हैं, अभी नहीं, अभी हम सपोर्ट करेंगे। तो प्रभुपाद जी ऐतिहासिक कार्य करते हुए हमेशा नम्र रहे और कभी ये नहीं सोचा कि हम इसके कर्ता हैं, हम इसके धर्ता हैं। और साथ साथ नम्रता का ये ज्ञान वो अपने सभी शिष्यों को भी देते थे कि कभी भक्त को ये न लगे कि हम ही कर्ता हैं, क्योंकि सेवा करते करते जब उत्कृष्ट सेवा हो, श्रेय मिलता है। और जब श्रेय मिलता है तो लगने लगता है कि क्या हमारे कारण ये हुआ। जब बजरंग बली हनुमान जी सीता देवी के पास पहुंचे और सीता देवी उनका सम्मान करने लगी, उनकी स्तुति करने लगी, लंका का उन्होंने दहन कर दिया था, रावण को नम्र बना दिया था, हनुमान जी ने इतना उत्पात मचा दिया, उसको देखकर सीता देवी कहती है, हनुमान जी आपने आज जो ये कार्य किया दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, मेरे पति राम भी नहीं कर सकते, उनके भाई लक्ष्मण भी नहीं कर सकते, तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो कर सकते हो। ये सेवा दूसरे की बस की बात नहीं, ये केवल आप कर सकते हो। ये अगर हम सुनते हैं तो मन बड़ा गदगद होता है, अहंकार बड़ा फूलने लगता, लगने लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे समझ लिया। और फिर लगता है कोई जल्दी रिकॉर्डिंग भी कर ले इसका, ज्ञानांजन शलाकया, इसकी ज्ञान के अंजन खुल गए। अहंकार को बड़ा आनंद आता है। लेकिन हनुमान जी की प्रतिक्रिया क्या थी, वो कहते हैं, मत विशिष्टाश्च तुल्याश्च संति तत्र वनौकस मत प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। अरे सीता देवी, सुग्रीव के संपूर्ण सेना में मुझसे निकृष्ट कोई नहीं, या तो सब मेरे बराबर के हैं या मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो किसी को लगेगा, हाँ भाई, सामाजिक प्रतिबंध के अंतर्गत तो नम्रता व्यक्ति ही करनी पड़ती है। अगर कोई आप महान हो प्रभु, आप जैसे सेवा कोई नहीं कर सकता, सबसे पहली प्रतिक्रिया, नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मन कहता है, नहीं सही है सही है। तो बाहरी रूप से हो सकता है हनुमान जी बोल रहे हैं क्या, तो हनुमान जी आगे अपना तर्क व्यक्त करते हैं और क्या कहते हैं, अहम तावत इह प्राप्ते किं पुनस्ते महाबलाः नहि प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हि तरे जनाः। अरे सीता देवी, संदेश वहां किसे भेजा जाता है, जो कोई सामान्य व्यक्ति होता है, निम्न व्यक्ति को संदेश वहां के रूप में भेजा जाता है। अब सोचो, कोई संदेश वहां कितना उत्पात मचा सकता है, इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, तो वास्तव में जो सेनापति आएंगे तब क्या होगा। तो हनुमान जी की कितनी शक्ति थी, उनकी नम्रता। लेकिन सबसे बड़े उनकी नम्रता की परीक्षा क्या थी, त्रेता युग में तो वो उस सेना के हीरो बने, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने विचार किया अब हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को हीरो बनाएंगे, और हनुमान जी को कहां बिठा दिया, ध्वज पे, झंडे पे, और क्या सेवा दी, ताली बजाने की, उत्साह बढ़ाने की, चिल्लाने की। सोचो जो पिछले युद्ध में हीरो रहे, सेना नायक रहे, उनको झंडे पे बिठा दिया तो लगेगा ना, अरे मेरा क्या रिकॉर्ड है और मुझसे क्या करवा रहे। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठ गए। अब फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने, फर्स्ट चैप्टर गीता में अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन हतोत्साहित हो गए, बेबस हो गए, रोने लगे, धनुष नीचे रख दिया। उसको देखकर हनुमान जी नीचे उतर के कृष्ण को बोले, नहीं पहले ही बोला था नए आदमी को मत धोई सेवा, उससे नहीं होने वाला है। अरे हम ट्राइड एंड टेस्टेड है बाबा, कहां नया नया आदमी को उतार रहे हो। कभी आपको मुझे कुछ लेक्चर देना पड़ा क्या पिछले युग में है? एक भी बार मैं रोया धोया क्या, कभी गदा नीचे रखी क्या, क्यों नया नया ट्रायल मारते रहते समझ में नहीं आता। हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण ने उनको जहां पर जिस स्थिति में रखा उसी में संतुष्ट। श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करने के पश्चात 1969 में कुछ शिष्य लोग अलग अलग फिलॉसफी से प्रभावित होकर श्री प्रभुपाद जी का कुछ अपमान सा करने लगे। सत्स्वरूप महाराज के लीलामृत में एक चैप्टर है, थ्रेट अगेंस्ट इस्कॉन। 66 में स्टार्ट हुआ, 69 में कुछ कुछ गड़बड़ शुरू हो गई, और तब प्रभुपाद जी बड़े हतोत्साहित हो गए। केवल 3 वर्ष के अंदर जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, प्रभुपाद जी उस समय विचार नहीं कर पा रहे थे किसके ऊपर श्रद्धा करें किसके ऊपर न करें। लॉस एंजलस में श्रील प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स बना दिया था और वहां सभी भक्त लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग दे रहे थे। 1969 में श्रील प्रभुपाद जी को लॉस एंजलस वहां पर रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर को छोड़कर और कहीं जाने की कोई योजना नहीं थी। रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर रोने लगे। देखिए अब श्रील प्रभुपाद जी की नम्रता। प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे रुक्मिणी द्वारकाधीश जी, 1922 में श्रील सरस्वती ठाकुर ने हमें आदेश किया, 1933 में प्रभुपाद जी ने दीक्षा ली, 44 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन आरंभ किया, 1955 में श्रील प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ धारण किया, 66 में इस्कॉन की स्थापना की। इतने लंबे समय के बाद, 40 वर्ष के बाद, अब हमारे गुरु महाराज के इस मिशन को हम संभाल पा रहे हैं। लेकिन 3 वर्ष के अंतर्गत आंतरिक रूप से कुछ उथल पुथल उठ गया, क्यों, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे वो रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रहे थे, रोते हुए रुक्मिणी द्वारकाधीश उनसे बोले, और प्रभुपाद जी को रुक्मिणी द्वारकाधीश की ध्वनि सुनाई पड़ी, और रुक्मिणी द्वारकाधीश ने कहा, गो टू इंडिया, भारत में जाइए। तो उस समय के विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी ने श्रेष्ठ उदाहरण दिखाया कि हो सकता है हम सेवा में उतरें तो हमेशा अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का विनम्र दास मानते हुए
भगवान की बदलते हुए इच्छा को देखते हुए, दर्शन करते हुए हमें उनके संकेत के अनुसार काम करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी तब जाकर 1969 और 70 में भारत में अपने प्रचार को आरंभ किए। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तोमर सेवा या दुख होए यत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशये अविद्या दुख। प्रभु आपकी सेवा में जो सुख और दुख का अनुभव हो, जो दुख का अनुभव हो वो भी सुख का मूल कारण है, क्योंकि चाहे वो भक्त बने अभक्त बने दुख और सुख तो आने ही है, लेकिन भगवान की सेवा में दुख झेलते हुए सहन करते हुए जब हम सेवा करेंगे अविद्या का नाश होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी नम्रता पूर्वक सेवा में लगे रहे। और दूसरा गुण लीडर का होता है नम्रता के साथ पूर्ण उत्साह, एंथुजियाज्म। तो चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए उसका उत्साह कम नहीं होता, क्योंकि दास का अर्थ यह नहीं कि वो अपनी मनमानी के अनुसार कार्य करे, जो स्वामी इच्छा करे उस इच्छा के अनुसार जो परिस्थिति हमारे सामने आए उसमें यथाशक्ति यथासंभव पूर्ण उत्साह के साथ लग जाना है। स्वैराचारब्धि सम्मग्नान जीवान गौरांग्रि पंकजे उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम समजीवयत। वर्णन किया गया है कि जीव अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भोग विलास में लगा हुआ है। गुरु परंपरा का कर्तव्य बनता है कि वो इस जीव के स्वेच्छा को भगवान के चरणों में समर्पित करे। उद्धृत्य चरणापत्तेर महात्म्यम समबोधयत। तो गुरु परंपरा विभिन्न प्रकार के कथाओं के माध्यम से भगवान के संदेश को जीव तक पहुंचाकर उसे सांत्वना देती है। शरणागति ही आपके लिए श्रेयस्कर मार्ग है। महात्म्यम सम बोधयत। इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो उस समय हमारे नाम के आगे क्या नाम लगता है? दास। दास नाम लगता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे, कुछ दीक्षा के बाद भक्त लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा नाम फलाना फलाना दास है, तुम्हारा नाम फलाना दास है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से अच्छा है। तो प्रभुपाद जी को पता लगा, बोले भैया दोनों नाम सेम है, नाम में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है? दास। तो हंसदूत प्रभु, उनका नाम था हैंस कैरी, जर्मनी के थे। अब जर्मन होने के नाते अमेरिका में उनके नाम को लेकर उपहास होता था, लोग मजाक उड़ाते थे। होता है कोई देश के एक भाग का व्यक्ति दूसरे भाग में चला जाए तो लोगों को नाम अटपटा लगता है। अब नॉर्थ का आदमी साउथ में जाए तो साउथ में तो नाम अलग होता है, कनकापति अपलाचलम शंकर लिंगम जगपति राजू, एक व्यक्ति का नाम है। पासपोर्ट बनाने जाए लगेगा चार आदमी का बना रहे। चाइना में जाओ तो नाम बड़ा सरल है, हु, नाम खत्म। तो यहां पर उनको लगा कि भाई हैंस कैरी नाम है, दीक्षा के बाद नाम बदलेगा। दीक्षा में प्रभुपाद ने नाम दिया हंसदूत अधिकारी। तो पूछा प्रभुपाद को, ये क्या नाम है, इसका अर्थ बताइए। प्रभुपाद ने कहा, पुराना नाम था ना हैंस, उसके आगे दूत लगाओ, हैंस दूत, दूसरा नाम था सरनेम कैरी, उसके आगे अधी लगाओ अधी कैरी। तो बोले यार दीक्षा के बाद भी नाम नहीं बदला, इसका मीनिंग क्या प्रभुपाद जी? प्रभुपाद ने कहा भागवतम पढ़ो समझ जाओगे। वो भागवत पढ़ने लगे लेकिन भरपूर पढ़ने के बाद भी नाम का अर्थ समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी एक प्रोग्राम में दीक्षा के बाद कुछ भक्तों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे, हंसदूत अर्थात ये ब्रह्मानंद अर्थात ये कीर्तनानंद अर्थात ये नाम का अर्थ बता रहे थे, तो हंसदूत प्रभु को लगा कि ये बेस्ट चांस है। प्रभुपाद के पास आके बोले प्रभुपाद जी हंसदूत कौन है? प्रभुपाद बोले आप। फिर प्रभुपाद ने कहा नाम में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है? दास। तो इसलिए जो भी सेवा हमें प्राप्त हो उसे उत्साह के साथ पूर्ण करने का प्रयत्न करना है। जदि से महाप्रभुर न पाई कृपा धन केव राज के बदेह सब अकारण। प्रतापरुद्र महाराज को चैतन्य महाप्रभु बारंबार तिरस्कृत कर रहे थे, उनकी उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रतापरुद्र महाराज पूर्ण उत्साह के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेने का प्रयत्न करते जा रहे थे और उन्होंने अपना संकल्प सिद्ध किया, अगर महाप्रभु हमको कृपा नहीं देंगे तो हम प्रयत्न करते रहेंगे और जब तक देह त्याग नहीं करेंगे तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। उत्साह का अर्थ यही है कि हम निरंतर गुरु साधु और शास्त्र के आचरण के अनुसार निर्देश के अनुसार प्रयत्न करते हैं। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, अचानक उन्होंने प्रश्न किया व्हाई इज कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है? एक भक्त ने कहा श्रील प्रभुपाद क्योंकि गीता ने कहा है। प्रभुपाद ने कहा गीता तो एक बुक है ग्रंथ है। तो दूसरे भक्त ने कहा प्रभुपाद क्योंकि आप कहते हो। प्रभुपाद ने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूं कुछ भी बोलता रहूं। तो बाकी सब लोग घबरा गए बोले क्या आंसर है? फिर प्रभुपाद ने कहा क्योंकि जब आप नाम जप करते हो कृष्ण का तब आपके अंदर परिवर्तन का अनुभव होता है, उस अनुभूति के कारण आप समझ सकते हो कृष्ण भगवान है। तो भक्तों को बड़ा अचरज हुआ कि वाह जबरदस्त आंसर दिया। 3 साल बाद प्रभुपाद जी दूसरे स्थान पर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, फिर प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया व्हाई इज कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तब उस ग्रुप में एक भक्त था जो पहले वाले मॉर्निंग वॉक पे था, उसको लगा अभी आंसर दूंगा तो सबके सामने शाबाशी मिलेगी और अपना भी मार्केट में भाव बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी के सामने बोलते प्रभुपाद क्योंकि जब नाम जप करते हो तो अनुभव होता है और उस कृष्ण के अनुभव से समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ने कहा नहीं क्योंकि गीता कहती है। फिर प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भक्ति में गुरु साधु और शास्त्र तीनों का मापदंड लेके चलना है, तब जाकर हम उत्साह को बनाए रख सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं तो वर्णन आता है चौदी के ते सब लोग बोले होरी होरी प्रेम वेशे मध्य नृत्य कोरे गौर होरी। सभी लोगों के बीच श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वरीय हरिनाम संकीर्तन करते हुए सबके चित्त वृत्ति को आकृष्ट करते हैं। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल प्रेमते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिना पक्षपात के, बिना किसी प्रकार के सामाजिक ऊंच नीच का विचार करते हुए समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित किया। श्रील प्रभुपाद जी एम्स्टरडैम में थे, एम्स्टरडैम में डीटी इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम था। प्रभुपाद जी ने देखा डीटी इंस्टॉलेशन के लिए कोई ठीक तरह से तैयारी नहीं हुई थी। प्रभुपाद जी ने पूछा, अरे यज्ञ के लिए फल कहां है? तो प्रेसिडेंट ने कहा, वो तो हमने फ्रूट सलाड में यूज कर लिया। फिर प्रभुपाद ने पूछा, ये कहां है? तो कोई उत्तर, वो कहां है? दूसरा उत्तर। प्रभुपाद जी को बड़ा क्रोध आ रहा था, चिल्ला रहे थे। अचानक ऑल्टर के अंदर से धम 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 करके आवाज आने लगी। प्रभुपाद घबरा के अंदर जाके देखा, क्या देखते हैं कि डीटी का साइज बड़ा था, ऑल्टर का साइज छोटा था। वो लोग जगन्नाथ जी को धक्का मार के अंदर कर रहे। प्रभुपाद जी, अरे पागल हो गए, क्या कर रहे हो? बोले, क्या करें, ऑल्टर का साइज थोड़ा छोटा हो गया। प्रभुपाद ने कहा, तो ऊपर का भाग काट दो। तो उसको काट डाला। और फिर जब बाहर लेके, वो ऊपर का भाग लेके जा रहे थे, टेलीविजन कैमरा सब लोकल टेलीविजन स्टेशन आए थे, उनको लगा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। प्रभुपाद बाहर आए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, विच रास्कल इज रिस्पॉन्सिबल, किसने ये किया ये सब? और इतने जोर से चिल्लाते हुए देखकर वहां एक हिप्पी श्री प्रभुपाद जी के पीछे बैठकर प्रभुपाद को देख रहा था। वो हिप्पी ने प्रभुपाद जी को पीछे से यू किया। प्रभुपाद जी पीछे मुड़े, हिप्पी ने प्रभुपाद जी के हाथ में माला दिया, बोला, चैंट हरे कृष्णा, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत कीजिए, हरे नाम जपिए। प्रभुपाद जी ने नम्रता पूर्वक माला ले ली। तो प्रभुपाद जी हर परिस्थिति में, चाहे कोई अनुकूल टीम हो न हो, जो कोई भी मिले, मिशन को आगे बढ़ाना है। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि हर परिस्थिति में हमें उत्साह पूर्वक भक्ति करनी है। तीसरा, लीडर का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो हर भक्त के योगदान की प्रशंसा करे, अप्रिशिएट All contributions। तो प्रभुपाद जी, चाहे भक्त कैसा भी क्यों न हो, अगर उसने कुछ योगदान दिया तो प्रभुपाद जी उसको अप्रिशिएट करते थे हमेशा। एक भक्त ने पेंटिंग बनाया, पेंटिंग में था राधा रानी कृष्ण की ओर इस तरह हार दे रही है, लेकिन वो भक्त ने पेंटिंग बनाते समय कुछ गलती कर दी। कृष्ण यहां है, राधा रानी का हाथ कृष्ण की ओर होने के बदले कृष्ण से दूर बना दिया, दूसरी दिशा में बना दिया। तो प्रभुपाद जी ने पेंटिंग देखा, बोले, यार इसने तो बिल्कुल उल्टा बना दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, राधा रानी हार किसको दे रही है, दूसरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो उसको देखकर वो पेंटर रोने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, वास्तव में राधा रानी को आपका पेंटिंग इतना अच्छा लगा कि वो आपको दूसरी तरफ बुला के आपको पेंटिंग दे रही है। अप्रिशिएट किया। प्रभुपाद जी श्याम सुंदर प्रभु को मिले तो श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद जी, आपसे मिलने के पहले मैंने कुछ पाप किए थे, अपराध किए थे, जिसके कारण अभी मुझे जेल में जाना होगा। और उनको लगा प्रभुपाद जी बड़े क्रोधित हो जाएंगे, मुझे जेल में जाना। प्रभुपाद ने कहा, अरे कृष्णा वॉज बॉर्न इन जेल, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है कि नहीं? अब जेल ऐसा जगह है कि किसी की मान हानि होती है। अब मैं जेल के एक प्रोग्राम में गया था तो मेरे सामने बैठे हुए थे कई तीन चार लोग, तिलक लगा के, गले में कंठी माला और कृष्ण का लॉकेट। उनको देख के मैं सोच रहा था, कौन है ये लोग? मुजरिम है, जेल के कैदी हैं, मेरे बात के स्पीकर हैं, दूसरे कोई संस्था के लोग हैं, अब जेल में किसी को पूछ भी नहीं सकते कैसे आना हुआ। और मेरा वो प्रोग्राम चल रहा था तब मंदिर में फोन आया ऑपरेटर के पास, और फोन वाले ने पूछा अरे गौरांग प्रभु कहाँ हैं, तो ऑपरेटर ने कहा जेल गए हैं। वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाता। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा लाइटली लेके उनको बोला रे कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ। फिर प्रभुपाद ने पूछा जेल क्यों जा रहे हो, तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा प्रभुपाद मैं थोड़ा ड्रग्स का व्यापार कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा रे हम भी प्रयाग फार्मेसी चला रहे थे। फिर प्रभुपाद ने कहा कितने साल के ले जाओगे, बोले 4-5 साल। प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, चैंटिंग करते रहो निकल जाओगे। वास्तव में वो गए जेल में, 2 महीने के अंदर जेलर उनके पास आके बोलते आपका रिलीज ऑर्डर साइन हो गया है। तो श्याम सुंदर बोलने का कैसे ये कैसे हो गया, बोला हमको मत पूछो हमको तो केवल ऑर्डर मिला है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी हरेक को बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि अगर किसी ने कुछ योगदान दिया हो तो अवश्य भगवान श्री कृष्ण ने हस्ताक्षेप किया है और श्री कृष्ण ने उनको एक निमित्त बनाया है। तो प्रभुपाद जी उनको अप्रिशिएट करते थे और फिर उनको सेवा दी। अब सोचो 5 साल वो अंदर रहते तो कभी बाहर नहीं निकलते, 5 साल तक बाहर नहीं निकलते तो लंदन नहीं जा पाते 70 में, और बीटल्स का प्रीचिंग नहीं कर पाते, फिर 71 में क्रॉस मैदान नहीं कर पाते। तो 71 में इंडिया आए तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा क्रॉस मैदान प्रोग्राम अरेंज करो। तो बोले यार इंडिया में इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम, कभी इंडिया का एक्सपीरियंस ही नहीं, और फिर वहां किसी लोकल लाइफ मेंबर से कार ले लिया और वो यहां वहां भागा दौड़ी कर रहे हैं प्रोग्राम अरेंज करने, इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम जहां हर रोज 1-1 लाख लोग आते थे। अब अरेंज करते करते गाड़ी चलाते हुए गए कल्पादेवी मार्केट में, किसी को ठोकर लग गया, गाड़ी चला रहे थे सामने से कोई अचानक जंप मार के आया उनके सामने। अब आपको तो पता है कि इंडिया में पाश्चात्य देश का कोई व्यक्ति कार चलाने आए तो ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा बहुत कुछ भी लगता है, कृपा भी लगती है। तो जैसे ही वो ठोकर लगी वो नीचे गिरा, पब्लिक जमा हो गई। श्याम सुंदर प्रभु को लगा अभी तो खत्म हो गया, हाथ में जप लेके माला लेके जपने लगे और सोचा कि अब क्या होगा पता नहीं। तब पब्लिक सामने जो गिरा हुआ था उसी को उठा के उसको पीटने लगे। श्याम सुंदर प्रभु बोले यार ये क्या हो गया, गलती तो मैंने की, पिटाई उसकी हो रही। फिर उनको लगा शायद इंडिया में वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट अपने ऊपर आएगा। अब अचानक पब्लिक हट गई और बोले जाइए आप। तो श्याम सुंदर को बोले अरे गलती तो मैंने की, उसको क्यों पीटा बेचारे को। तो कहते हैं अरे आप कृष्ण के भक्त का वेश धारण करके जा रहे हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई कृष्णा के डिवोटी को डिस्टर्ब करने। तो बोले प्रभुपाद बोलते थे कि भारत में सनातन धर्म का बड़ा सम्मान होता है, तो किसी व्यक्ति ने केवल वेश धारण किया उसका इतना सम्मान है, तो सोचिए कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। फिर चौथा, प्रभुपाद रिकग्नाइज्ड एक्सलेंस, अप्रिशिएट, प्रशंसा तो सबकी की जिसने भी योगदान दिया, लेकिन किसी ने बहुत महत्वपूर्ण सेवा की तो प्रभुपाद जी ने उनको अधिक उत्तरदायित्व दिए, रिकग्नाइज्ड एक्सलेंस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई भक्त कोई श्रेष्ठ सेवा करे तो उस सेवा के अंतर्गत उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो वही हम सदूत प्रभु जैसे ही प्रभुपाद जी बोले वी शुड हैव वर्ल्ड ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, विश्व भर में एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी होना चाहिए। हंसदूत प्रभु गए और एक घिसा पिटा बस लेके आ गए, इतना पिटा हुआ था कि उसमें कोई पेंट नहीं था, साइड में शीशे नहीं थे, ड्राइवर के सामने भी शीशा नहीं था, और पूरे बस में एक ही सीट था ड्राइवर के लिए। प्रभुपाद आए, बोले मैं कहाँ बैठूंगा, तो भक्त लोग भागे भागे गए, एक चेयर लाके आए रखा। प्रभुपाद बोले अरे चेयर हिलेगा, तो ब्रह्मानंद प्रभु आके बैठ गए, बोले अब नहीं हिलेगा। फिर प्रभुपाद बैठे, हंसदूत प्रभु बैठे, इग्निशन ऑन किया, जैसे ही इंजिन ऑन किया अचानक धुआं निकलने लगा, इतना धुआं निकला प्रभुपाद बोले अरे ये तो भारत का बस जैसा लग रहा है। इसको सुनकर लोगों को लगा कि प्रभुपाद भारत से हैं तो बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं आपका उत्साह ठीक है लेकिन थोड़ा बेटर बस रहेगा तो अच्छा। अब 3-4 साल के बाद प्रभुपाद जी ने हंसदूत प्रभु को बोला कि हम आपको बीबीटी का ट्रस्टी बना रहे हैं। तो हंसदूत प्रभु बोले प्रभुपाद जी मैं तो 11th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप आउट हो गया, डिग्री नहीं है कुछ नहीं है, इतना बड़ा दायित्व तो क्यों दे रहे हो। प्रभुपाद ने कहा भक्ति में डिग्रियों के आधार पर उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता, आपकी नम्रता और सेवा भाव के आधार पर दिया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वास्तव में उनको रिकग्नाइज किया। कौशल्या देवी 22-23 साल की आयु में भारत में आकर इतना सुंदर उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया जयपुर में, बड़ा पंडाल, कई लोग आए हुए थे, प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए, प्रभुपाद जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, कई वहां के उद्योगपति बैठे हुए थे, प्रभुपाद बोले देखो क्या कितना जबरदस्त इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया है। और कुछ वहां पर बैठे हुए लोकल निवासी कहने लगे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश के आपके जो शिष्य हैं कीर्तन वीर्तन तो कर लेते हैं, हरे कृष्णा, फिलॉसफी कुछ आती नहीं इनको। प्रभुपाद ने कहा क्या बात कर रहे हो, ये कौशल्या बहुत बड़ी फिलॉसफर है, सारा उपनिषद जानती है, और उनको केवल ईशो उपनिषद के 5 श्लोक पता थे। फिर प्रभुपाद जी ने बिना रोके और बिना अवसर दिए कहा कौशल्या उपनिषद सुनाओ, पूरा उपनिषद सुना डालो। कौशल्या देवी बोले यार 5 के आगे तो अपनी बोलती बंद हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा स्टार्ट करो, चांस ही नहीं दिया, सारे बड़े बड़े नागरिक बैठे हैं और उन्होंने स्टार्ट किया, 1st श्लोक, 2nd श्लोक, 3rd श्लोक, जब तक 4th श्लोक पर आई हृदय धक धक कर रहा था कि आगे क्या होगा, जैसे ही 4th श्लोक खत्म किया प्रभुपाद ने कहा बस इसका मतलब आपको सब पता है। वहां बैठे हुए एक उद्योगपति ने ऑब्जेक्शन लिया, प्रभुपाद जी इन्होंने संस्कृत श्लोक जो सुनाया उसका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं था। प्रभुपाद ने कहा लेकिन इसका रिनंसिएशन कितना बढ़िया है, कि सब कुछ छोड़कर देखो यहां आकर सनातन धर्म के वो प्रचार में लगी हुई है। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे निकले, पीछे नंद कुमार दास चल रहे हैं, कुत्ता लग गया उनके पीछे, नंद कुमार दास चिल्लाते हुए भागे भागे प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद 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 पीछे मुड़के अद्भुत दृश्य देखे, कुत्ता भाग रहा है, नंद कुमार दास सामने सामने भाग रहे हैं, धोती आवा उड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी पूरे सिचुएशन को भाप गए, बाकी सारे शिष्य लोग घबरा गए अब क्या होगा। भागते हुए कुत्ते को प्रभुपाद जी ने देखा, धीरज से थोड़ा झुके, अपने सर के ऊपर अपना वॉकिंग स्टिक लिया और वॉकिंग स्टिक को अपने सर के ऊपर उठाकर कुत्ते के आंख में आंख मिला के प्रभुपाद ने जोर से चिल्लाया हट। अमरीकी कुत्ते ने देसी गाली सुनी नहीं, उधर ही बैठ गया। शिष्य लोग भी बड़ा इंप्रेस हो गए कि प्रभुपाद कुत्ते को भी कंट्रोल कर। 3 साल बाद नंद कुमार दास जयपुर में रोटी बना रहे थे किचन के अंदर, अचानक एक बंदर घुस आया। बंदर को देखकर रोटी बनाने के बेलन को लेकर उसने हट किया, बंदर कटोरा लेके मारा। वो भागे भागे प्रभुपाद के पास आए, बोले प्रभुपाद मैंने वही फॉर्मूला यूज किया लेकिन काम नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा तुमने देखा लेकिन समझे नहीं। तो इसलिए जो पांचवा नेता का जो लीडर का गुण होता है, ही गिव्स क्रिएटिव फ्रीडम आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन एक्सेलेंस, ही गिव्स क्रिएटिव फ्रीडम, अर्थात अपने समझ के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के अनुसार कुछ स्वतंत्रता हमारे पास है। परंपरा के उस ज्ञान को समझकर, उस ज्ञान के निष्कर्ष को अपने जीवन में उतार कर, फिर सेवा को देश काल और पात्र के अनुसार उसे स्वीकार करो और उसे पूर्ण करो। प्रभुपाद जी बैठे थे और प्रभुपाद जी 12 महाजन का वर्णन कर रहे थे, स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमार, कपिल इत्यादि। तो प्रभुपाद बोले थे ये हैं 12 महाजन। एक भक्त ने कहा प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो। प्रभुपाद ने कहा और तुम 14वें। केवल ये मत सोचो वो महाजन हो गए, अभी उन्होंने जो किया हम अपने हिसाब से कुछ भी करेंगे। उनके पद चिन्हों में चलते हुए अपने को इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करना है। और इसीलिए ठाकुर हरिदास माया देवी के सामने आकर उनको पराजित किए। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलते लागिला तारे होया सदय, माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। ठाकुर हरिदास का हृदय निर्विकार था क्योंकि उनका हृदय पूर्णतः गुरु, साधु और शास्त्र में समाहित था। माया दासी प्रेम मांगे, माया देवी ठाकुर हरिदास से प्रेम मांगने लगी। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय, साधु की कृपा और हरिनाम के बिना प्रेम जन्म नहीं ले सकता। इसलिए हम सभी इस्कॉन के भक्तगण, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा से हम सभी को ये सत्संग दिया। और कल उनके तिरुभाव महोत्सव में हम एक याचक के रूप में तृण अपने दांतों के बीच रखकर उनसे करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए श्रीला प्रभुपाद, जिससे हम भी इस इस्कॉन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने भक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए नम्रता, उत्साह, भक्तों की प्रशंसा, भक्तों ने जो उत्कृष्ट सेवा किया उसको समझकर उसे स्वीकार करके और उसके अनुकूल उन्हें उत्तरदायित्व देने की क्षमता और हर भक्त को सेवा करने के लिए अनुरूप अनुकूल स्वतंत्रता, ये सभी गुणों से हमें विभूषित करें। इन प्रार्थनाओं के साथ मननशील होकर हम कल श्रीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव महोत्सव मनाएं। आप सभी यहाँ पर आज के प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हुए, कृष्ण बलराम मंदिर के सभी प्रबंधकों को, मैनेजमेंट को हम धन्यवाद देते हैं कि लाखों की संख्या में जो भक्तगण यहाँ आ रहे हैं उन सभी के लिए कितनी उत्कृष्ट व्यवस्था हम लोगों ने की। इन शब्दों के साथ कथा को मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।